बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 5 नवंबर दिन शनिवार। मैं हूं संदीप सोनी। सेना का काम देश की रक्षा करना है या पुल और सड़क बनाना। मुंबई में फौज को एक फुट ब्रिज बनाने के काम में लगाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में भी फौजियों से काम लिया गया। फौज को सिविल कामों में लगाना कितना उचित है, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए कितना ठीक है, ये बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे यहाँ पर और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। बिहार के बेगूसराय में आज सुबह गंगा स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु सिमरिया घाट के नजदीक इकट्ठा हुए थे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि वह इसकी जांच कर रही है कि यह दुर्घटना कैसे हुई। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में महिलाओं की मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी जान को खतरा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरीरी ने हिजबुल्ला और ईरान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईरान जाता हो और भय एवं तबाही ना फैलाता हो। उन्होंने कहा कि लेबनान में वैसी ही स्थिति है जैसी 2005 में उनके पिता रफीक की हत्या के समय थी। हम वैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जैसी रफीक हरीरी की हत्या से पहले थी। मेरी जिंदगी को खतरा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसा कि मैंने शहीद रफीक हरीरी के सिद्धांतों से सीखा है, मैं कभी भी लेबनान के लोगों को नीचा दिखाए जाने को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं लेबनानी सरकार से इस्तीफे की घोषणा करता हूँ। ये थे साद अल हरीरी के शब्द। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक अदालत ने देश के पहले उपराष्ट्रपति जनरल अब्दुल राशिद दोस्तुम के 7 सुरक्षाकर्मियों को अपहरण और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। सुरक्षाकर्मियों पर आरोप था कि उन्होंने उनके राजनीतिक विरोधी और पूर्व गवर्नर अहमद इस्ची का उत्पीड़न किया था। दोस्तुम एक पूर्व सैनिक रह चुके हैं जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं। कैटलोनिया सरकार के पूर्व प्रमुख कार्लेस पुज़ेमोंड ने आग्रह करते हुए सभी लोकतांत्रिक लोगों से एकत्र होकर कैटलोनिया में जल्द चुनाव कराने को कहा है। पुज़ेमोंड इस समय बेल्जियम में हैं और स्पेन की अदालत ने उनको देश में वापस लाने की मांग की है। अदालत ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और उन पर राजद्रोह का आरोप है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पापुआ न्यूगिनी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हिरासत केंद्र में सैकड़ों शरणार्थियों के साथ बर्ताव के खिलाफ 1000 से अधिक लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े शहरों में प्रदर्शन किया। ग्रीन पार्टी के सांसद एडम बेंट ने मेलबर्न में एक भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासियों ने कोई अपराध नहीं किया है। वे वही कर रहे थे जो खतरे में रहने पर कोई व्यक्ति करेगा। कैनबरा और मैनस के बीच जो हो रहा है वह एक आतंक का पर्याय बन गया है। अगर आतंक की परिभाषा ये है कि राजनीतिक मकसद के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जाए, तो आवर्जन मंत्री पीटर डटन आतंकी हैं। ये थे सांसद एडम बेंट के शब्द। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 सीरीज का दूसरा मैच गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान कैन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम ने 6 ओवरों तक बिना विकेट गंवाए 48 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीटर पिल्स नामक बड़े नेता ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। पीटर ने कहा कि उन्होंने हमेशा राजनीति में उच्च मानकों का समर्थन किया है और ये उन पर भी लागू होता है। कई महिलाओं ने पीटर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े कदम उठाने को लेकर जर्मनी में बॉन की सड़कों पर तकरीबन 6000 प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला है। बॉन में सोमवार से संयुक्त राष्ट्र का सालाना जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। पेरिस समझौते से संयुक्त राष्ट्र को बाहर करने के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादे जाहिर होने के बाद ये पहली बैठक है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811-7000 और 1811-2007001। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के ट्रैफिक ने उन्हें स्टूडियो तक आने नहीं दिया। राहुल जी, स्वागत आपका बीबीसी इंडिया बोल में। आप हमें सुन पा रहे हैं राहुल जी?
मैं सुन पा रहा हूँ जी।
जी बहुत स्वागत है आपका, और स्वागत हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो हमें दुनिया भर में रेडियो के अलावा bbchindi.com और फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं। बीबीसी इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, सेना का काम देश की रक्षा करना है या पुल और सड़क बनाना। मुंबई में फौज को एक फुट ब्रिज बनाने के काम में लगाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में भी फौजियों से काम लिया गया। इससे पहले कि हम श्रोताओं से बात करें, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करें, रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी, हम आपसे जानना चाहेंगे, फौज को सिविल कामों में लगाना कितना उचित है, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपकी राय।
ये बिल्कुल उचित नहीं है, और ये फौज को जब आप सिविल काम में लगाते हैं तो यही जाहिर है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम ही नाकामयाब हो गया है, बिल्कुल ही यूजलेस हो गया है। जैसे ये आपने पुल की बात की, रेलवे का एक रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस है जिसमें तरह तरह के इंजीनियर भर्ती किए जाते हैं और रेलवेज में वो सर्विस करते हैं। जैसे वो रेल ट्रैक बनाते हैं, रेलवे ब्रिज बनाते हैं, रेलवे कलवर्ट बनाते हैं, तो उनकी ये स्पेशलिटी है। तो अगर रेलवेज के इंजीनियर ये ब्रिज नहीं बना सकते तो ये फौज को क्यों दिया गया है? इसका मतलब है कि रेलवेज बिल्कुल नाकामयाब हो गए हैं। और बाकी भी जैसे आपने अर्ज किया कि ये श्री श्री रवि का जो यहाँ आंदोलन हुआ दिल्ली में, उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में फौज को मच्छर मारने के लिए और सांप मारने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को के लिए डिप्लॉय किया गया। तो इन कामों और कुछ महीना पहले डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के कहने पर फौज को ये काम सौंपा गया कि आप पहाड़ों में जो लिटर है, जो गार्बेज है, उसको उठाने का ऑर्डर दिया गया। और मैं उस टाइम पे लद्दाख में था और मैंने ये देखा लद्दाख में कि जो फौज है वो फौज के बटालियन जो है वो पहाड़ियों में जाके प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के जो थैले हैं उनको साफ कर रही हैं। तो ये फौज का काम नहीं है, और ये काफी सीनियर जनरल्स जो हैं उन्होंने इसकी बहुत मुखालफत की है और बुराई की है, और उनको बहुत ये सदमा लगा है कि ये आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने ये सरकार की जो ख्वाहिश है उसको कबूल करने के लिए ये कामों पे फौज को लगाया है।
रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी के साथ चर्चा हमारी जारी रहेगी। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं श्रोताओं को, आइए देखते हैं इस समय टेलीफोन लाइन के जरिए कौन श्रोता कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
हाँ नमस्कार सर।
जी नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
हम सर बोल रहे हैं जौनपुर से, मुमताज खान।
मुमताज खान साहब जौनपुर से बोल रहे हैं, कैसा मौसम है वहाँ? दिल्ली की तरह सुबह शाम सर्द होने लगी है?
सर्द यहाँ भी जो है बढ़ गई है, शाम को जो है अब दूसरी टाइम मीटिंग 12 बजे के बाद ठंडी काफी लगने लगी है।
चलिए इस ठंडे के मौसम में चर्चा का विषय हम आगे बढ़ाते हैं, आपको कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आप जानते हैं आज चर्चा हम किस विषय पर कर रहे हैं, रखें अपनी बात।
हाँ मैं कह रहा हूँ, ये जो सेना के जवानों को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग जो है, उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके लिए दिया गया है, कहीं उनको जाने आने में असुविधा हो रही है उसके लिए वो पुल और उसका निर्माण करें, न कि वो जो है पूरे देश में जहां गंदगी फैली है उसको साफ करने के लिए उनकी ड्यूटी ये नहीं है, ये गलत तरीका अपनाया जा रहा है।
और कौन श्रोता इस समय जौनपुर के बाद हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी मैं बाड़मेर कितनौरिया गांव से पठान खान गज्जू बोल रहा हूँ।
पठान खान गज्जू साहब, राजस्थान से बहुत स्वागत है आपका। रखें अपनी बात कार्यक्रम में, कहिए क्या राय रखते हैं आप जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
जी भैया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सैनिक को जो इस्तेमाल करने वाले जो नेता साहब हैं, जो मंत्री साहब हैं, उनको ध्यान सैनिक के ऊपर देना चाहिए।
अच्छा,
जो पुल बनाने के लिए सैनिकों को काम लगा दिया तो हमारी सरहद पे कौन करेगा रक्षा?
लेकिन
वो तो हमारे सरहदी इलाके पे रक्षा करने के लिए, और दूसरा जो भी कोई भी काम अचानक पड़े या कोई दुख भरा काम पड़े तो उनमें लेना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, पुल ना बनाना चाहिए उनको।
अच्छा, पुल नहीं बनाना चाहिए।
जैसे कोई भी आपदा रात हो उनमें सैनिक काम देते हैं।
जी
जी, मेरी तो
राय यही। जी बहुत अच्छा लगा आपने कार्यक्रम में अपनी बात रखी। और श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं, कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
आदाब सोनी जी, मैं दिलार हुसैन कादरी बोल रहा हूं।
कादरी साहब, कादरी साहब आपको भी हमारा आदाब। राजस्थान से आप बोल रहे हैं, जैसलमेर से। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ।
मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ सर, ये तो बेहद नाइंसाफी का विषय है जो फौज को ऐसे कामों में लगाया जाता है, जो फौज हमारी हिफाजत के लिए, मुल्क की, इस देश की, इस वतन की, आवाम की हिफाजत के लिए, अगर वतन पे वक्त आए तो पुल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे फिजूल मौकों पे अगर फौज के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए तो ये सर नाइंसाफी का विषय है।
कादरी साहब, इसी तरह समय निकाल कर अपनी बात हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर पहुंचाते रहिएगा, हमें आपकी राय का और तमाम श्रोताओं का इसी तरह इंतज़ार रहेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैंने भारतीय सेना से रिटायर हो चुके कई जनरल और लेफ्टिनेंट जनरलों से बात की, उनमें से कुछ की अपनी व्यस्तताएँ थीं और कुछ इस मुद्दे पर ऑन रिकॉर्ड बोलना नहीं चाहते थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाक से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में लाइव तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन जब मैंने उनसे ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने समय निकालकर अपनी बात रिकॉर्ड करवाई है। आइए सुनते हैं इस मामले पर उनकी राय क्या है।
देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सेना का जो प्रीमियर काम है, सेना की जो प्राइमरी ड्यूटी है, वो है देश की रक्षा करना और देश की सरहदों की रक्षा करना, चाहे वो अंदरूनी टेररिस्ट हो या बाहर के दुश्मन हो, उनसे देश की रक्षा करना। और हमारे जो दूसरे टास्क हैं कि वो जरूरत पड़ने पर जब सिविल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो उनकी मदद करना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और सेना का तीसरा काम है, और जो कि प्रमुख काम नहीं है लेकिन तीसरा काम है, कि नेचुरल क्लैमिटीज के दौरान और एमरजेंसीज के दौरान अगर कोई भी टास्क सरकार से मिलता है उसको पूरा करना। तो ये जो पुल बनाने का टास्क है, ये मैं कहूंगा इसके किसी भी फौज की, सेना की जो ड्यूटी उसके नीचे नहीं आता है। ना तो ऐसी कोई इमरजेंसी थी, क्योंकि ये पुल जो है रेलवे ने प्लान किया हुआ है, 2018 तक का कंप्लीशन डेट किया हुआ है, आराम से उसको ये लोग अपना कर रहे थे। अगर अर्जेंसी गवर्नमेंट को समझती है कि अर्जेंसी है, तो अर्जेंसी फिर रेलवे क्यों नहीं करती? उनके पास हर किस्म के इंजीनियरिंग कार्य करने की क्षमता है, तो फिर क्यों नहीं रेलवे को ये टास्क दिया गया? तो मेरे दृष्टिकोण से ये खुद ही एक तो पूरी जो हमारी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसकी नाकामयाबी और इनएफिशिएंसी जाहिर करता है, और ये भी जाहिर करता है गवर्नमेंट को ना तो रेलवे में विश्वास है, ना ही गवर्नमेंट को ये विश्वास है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, अपने पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और ना ही अपने प्राइवेट सेक्टर में विश्वास है, और गवर्नमेंट को सिर्फ विश्वास है सेना के ऊपर। तो मेरी समझ में तो क्या ये विश्वास जाहिर कर रहा है या सिर्फ एक पब्लिक को दिखावा करने के लिए कि सेना हमारे साथ है, हम सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात को दर्शा रहा है।
लेफ्टिनेंट जनरल पनाग कह रहे थे सेना में सरकार का भरोसा है, लेकिन क्या इस भरोसे को जताने का इससे बेहतर कोई तरीका और नहीं हो सकता था? ये सवाल मेरे मन के साथ साथ श्रोताओं के मन में भी ज़रूर उठ रहा होगा। हम रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी को चर्चा में शामिल कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से श्रोताओं के पास चल रहे हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए। कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो जी, नमस्ते।
मैं फिरोज अहमद बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश सर।
फिरोज अहमद रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
जी सर।
जी फिरोज साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से आपका टेलीफोन आज पहली बार लगा है।
जी सर, जी सर,
बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
हाँ सर, सर मैं बात रख रहा हूँ सर, ये फोन के साथ जो इतना बड़ा हर हमें इतना होता रहा सर, अन्याय अभी हो रहा सर, कि फौज जो रखी हुई है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वो अपने काम के लिए मान लो लड़ाई लग गई तो उसकी हिफाजत के लिए और पुल बनाना है, सब चीज उनके अपने काम के लिए रखा गया है, ना कि जो है समाज दुनिया के जो है फालतू काम करने के लिए है। और उनको जो अधिकारी है साहब, उनको भी सोचना चाहिए, वो भी मुंह नहीं खोलते, वो बताते कि ये गलत काम हो रहा है, सोचा तो हो ही रहा उनके साथ ऐसा।
अच्छा, राहुल बेदी साहब रक्षा विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हैं, आपने सुना हमारे श्रोता किस तरह से अपने तर्क रख रहे हैं, आपको लगता है बेदी साहब की सेना के भीतर डिसीजन लेवल लेने के लेवल्स अलग अलग होते हैं, जब इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो सेना के भीतर भी कुछ मतभेद होते होंगे, जो अलग बात है कि सामने नहीं आ पाते, खुलकर कोई कह नहीं पाता कि साहब ये ठीक है या नहीं है।
देखिए, ये जो पहली बात तो ये सेना में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो अभी तक कामयाब है और जो अच्छा काम कर रहा है और उसमें डिसिप्लिन भी है फोर्स में, मगर जो सिविल ऑर्डर आता है या जो पॉलिटिशियन फौज को इस्तेमाल करना चाहता है पुल बनाने के लिए या गंदगी को साफ करने के लिए या कॉमनवेल्थ गेम्स के मच्छरों को मारने के लिए, वो आर्मी चीफ के नीचे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका हक है, तो ये आर्मी चीफ के कहने के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और जो हमारे अब जो आर्मी चीफ साहब मौजूद हैं वो थोड़े कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में उनको आर्मी चीफ बनाया गया था, तो ये भी चर्चा हो रही है बाकी रैंक्स में कि आर्मी चीफ थोड़ा पॉलिटिशियंस के साथ ज़्यादा तालमेल है उनका, और पॉलिटिशियन भी चाहता है कि जो पॉलिटिसाइजेशन करके आर्मी की और मिलिट्री की उनको फायदा मिलता है अपनी पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स को आगे चलाने का, अपनी नेशनल पॉलिटिक्स जो है, तो ये एक बड़ा ही गंभीर और बड़ा कॉम्प्लेक्स ही बात बन जाती है कि नेशनलिज्म के जरिए ये फौज को इस्तेमाल जब किया जाए तो पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स आगे बढ़ता है। तो ये जो चीज है आर्मी की, जो जैसे आपके श्रोताओं ने कहा कि आर्मी का बेसिक फंक्शन जो है, और जनरल पनाग ने भी कहा, वो डिफेंस ऑफ द कंट्री है, तो अगर फौज को आप इन कामों में लगा दीजिए, एक आप देखिए फौज की लगभग संख्या जो है वो 12-13 लाख है, अगर आप सिविल मिलिट्री और पैरामिलिट्री और जो प्रोविंशियल फोर्सेज हैं उनको अगर आप पूरा कहिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन अंडर आर्म्स, तो लगभग वो फौज से 2.5 या 3 गुना ज्यादा हैं। मगर जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, कश्मीर में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये हरियाणा में अभी बाबा राम रहीम का जो हुआ है, तो ये फौज को डिप्लॉय किया जाता है। तो इसका मतलब है कि पैरामिलिट्री भी फेल हो गई है, स्टेट पुलिस फोर्सेज भी फेल हो गई हैं और सिर्फ आर्मी रह गई है। तो ये एक बात जो है ये एक बहुत गंभीर है और इसका कोई इसकी तरफ कोई सोच नहीं रहा और इसका कोई निर्णय नहीं हो रहा, तो ये मुझे मेरे हिसाब से ये बहुत सीरियस समस्या है।
राहुल बेदी, आप कार्यक्रम में बने रहें, अभी लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट पनाग वो कुछ और भी कहना चाहते हैं, उनको भी सुनते हैं।
देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में भी और डिक्टेटरशिप में भी जो है सरकारें सेना का जो है पॉलिटिकल फायदा उठाते रहते हैं, ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी में भी होता है, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पीचेस वगैरह को पढ़ें तो वो भी इस बात का इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर जो है जो सेना की जो छवि है हमारे लोगों के अंदर वो बहुत ऊंची है, सेना के लिए जो भावनाएं हैं पब्लिक में वो बहुत अच्छी हैं और सेना को उसको बहुत प्रमुखता देना चाहते हैं। अब सरकार जो है ये सेना की भावनाओं का भी फायदा उठा रही है और फौज को ऐसे कामों के लिए और फौज को हर पॉलिटिकल एक्शन में अपने साथ इस्तेमाल करके ये इन दोनों बातों का मिश्रण कर रही है और डेफिनेटली उसमें पॉलिटिकल एडवांटेज उठा रही है। बाकी सरकारें भी उठाती हैं, लेकिन इस सरकार ने शुरू से ही ये कहा कि हम सेना को प्रमुखता देंगे और हम सेना की देखभाल करेंगे, हमारे सैनिक बॉर्डर पर हैं, हम यहाँ पर हैं। तो ये मेरे ख्याल में दोनों बातों का ये फायदा उठा रहे हैं, एक तो सेना का डायरेक्टली फायदा उठा रहे हैं और दूसरा जो लोगों में सेना के प्रति भावनाएं हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो तभी जो है हर बात के लिए अगर कोई आदमी कंप्लेन करता है कि जी हम क्यू में खड़े हुए हैं और एटीएम में पैसे नहीं है डिमोनेटाइजेशन के दौरान, तो उसको कहा जाता है कि सेना का हमारा सैनिक सियाचिन में -30 डिग्री के ऊपर सेंटीग्रेड में खड़ा हुआ है, तो आप क्या एक क्यू में नहीं खड़े हो सकते।
लेफ्टिनेंट जनरल पनाग के तर्क सुने आपने, उनका दावा है कि सरकार सेना और सेना के प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं का फायदा उठा रही है, फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राहुल बेदी, आपसे जानना चाहेंगे आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है यहाँ पर।
मैं तो जनरल पनाग के साथ बिल्कुल सहमत हूँ और फौज की जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो तो काफ़ी ऊँची है और अभी तक फौजियों का भी काफ़ी कदर करते हैं लोग, तो अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, अगर जहां भी राइट सिचुएशन होती है, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस होती है, जब आर्मी वहां आ जाती है तो लोगों में थोड़ी चैनी जो है वो बेचैनी जो है उनकी हट जाती है, क्योंकि फौज में लोग ट्रस्ट करते हैं, फौज में लोगों का विश्वास है। तो ये इसका फायदा उठाना, इसको एक्सप्लॉइट करना अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, ये तो बहुत, मैं तो इससे बहुत गलत बात समझता हूँ। और ये सरकार, जैसे जनरल पनाग ने कहा, पिछले 3-3.5 साल से जब ये नई सरकार आई है तो इन्होंने ये चीज़ों को का फायदा बहुत उठाया है और ये फौज की जो अपनी बेसिक फंक्शन है, जो डिफेंस ऑफ द नेशन है, उसमें उसकी ट्रेनिंग का, उसकी आर्मामेंट्स का, जैसे आप अगर इनका फौज का इक्विपमेंट प्रोफाइल देखिए तो इनका इतनी शॉर्टेज है, ये बेसिक, इनके पास असॉल्ट राइफल भी नहीं है पिछले 10 साल से, कार्बाइन पिछले 12 साल से नहीं है फौज में, आर्टिलरी की तो शॉर्टेज है, हर चीज़ों की शॉर्टेज है। तो ये शॉर्टेजेस भी नहीं पूरी की जा रही और इनको सिविल ड्यूटीज में डिप्लॉय किया जा रहा है, तो ये आर्मी का जो फाइटिंग एज है, आर्मी का जो एडवांटेज है वो कम होता जा रहा है।
सेना के राजनीतिक इस्तेमाल के क्या खतरे हो सकते हैं, खासतौर पर वहां जहां लोकतंत्र है, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हेलो
जी। हेलो सर जी।
जी नमस्ते।
जी सर जी, मैं हरि नारायण प्रजापति सेमलिया काला पीपल एमपी से बोल रहा हूँ।
काला पीपल एमपी भोपाल से उज्जैन जाते हैं बाई ट्रेन, तब रास्ते में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है।
जी 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 सर, बस उसी से 7 किलोमीटर गांव है मेरा सर सेमलिया का।
बहुत बढ़िया, कैसे सुनते हैं आप हमें?
सर मेरे को 80 के आसपास से सुन रहे हैं सर, मेरे पास 4-5 रेडियो और बीबीसी सुने बिना तो रहता नहीं हूं।
बस, बस, सुनते रहिए, सुनते रहिए इसी तरह और कार्यक्रम में फोन करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका, समय कम है हमारे पास, रखें अपनी बात।
हाँ सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा हमारी सेना दुनिया में जानी पहचानी है और सर दुनिया को हमारा मालूम पड़ेगा कि हमारी मिलिट्री सर ये बताइए आपके ऐसा घटिया काम कर रही ब्रिज बनाने का, तो सर हमारी दुनिया में क्या इमेज रह जाएगी सर।
ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन सरकार को तो ये नहीं लगता कि ये घटिया काम है, सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो सर जी मैं एक बात आपकी काट के बोलूंगा सर, तो वो जो नेता है वो अगर इस काम को संभाल ले तो कितना अच्छा रहेगा सर, वो अगर चाहे तो इसको।
इसीलिए तो हम ये चर्चा कर रहे हैं मित्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी अपनी बात रखिएगा। और मैं जिक्र कर रहा था इन श्रोता से बात करने से पहले कि सेना के राजनीतिक इस्तेमाल के क्या खतरे हो सकते हैं, खासतौर पर वहाँ जहाँ लोकतंत्र है। आइए सुनते हैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल पनाग की जुबानी।
आर्मी की जो पॉलिटिसाइजेशन है वो सेना के लिए भी खतरनाक होती है और देश के लिए भी खतरनाक होती है। पाकिस्तान के बारे में एक कहानी कही जाती है कि 50s के अंदर एक बार लाहौर शहर में दंगे फसाद हुए अहमदियों के खिलाफ, मेरे ख्याल 1952 की बात है, तो उसमें सेना को भेजा गया। तो जब सेना ने दंगों को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद उन्होंने लाहौर शहर को सफाई शुरू कर सफाई करवा दी, क्योंकि सेना वहां डिप्लॉयड थी। तो उसके बाद लोगों को ये बात बहुत पसंद आई और लोगों ने सेना की बहुत प्रशंसा की और सेना को कहा कि सेना बहुत अच्छे काम करती है। तो करते 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 1958 में पाकिस्तान के अंदर सेना ने कंट्रोल ले लिया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। और अभी भी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो गवर्नमेंट इनएफिशिएंट दिखती है, तो जब भी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट दिखती है, उनकी करप्शन दिखती है, तो सेना को वहां पर लाने का की मांग जो है बढ़ जाती है और इसीलिए सेना वहां पर इन्वॉल्व हो गई है। जबकि भारतीय सेना शुरू से ही अपोलिटिकल है और भारतीय सेना ने पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखा है। और हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन हो, मशहूर जनरल बीएम कौल थे, उनकी जो शुरू की जो शोहरत थी वो इसलिए थी कि उन्होंने कहा कि मैं सेना का इस्तेमाल करते हुए जवानों के लिए फैमिली अकोमोडेशन बनाऊंगा। उन्होंने 1600 घर बनवाए सेना की, सेना को लेबर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए। और जबकि जनरल थिमाया इस बात के खिलाफ थे, उन्होंने जनरल थिमाया के ऊपर से जाकर डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन जी से परमिशन ली और इस काम को करके दिखाया, और इसलिए भारत को उनका सबसे पहला परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। फिर जब वो फोर कोर गए 1962 की लड़ाई से पहले, तो उन्होंने वहां भी यही काम शुरू किया और वहां पर भी प्रधानमंत्री को बुलाकर प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की कि हम टेम्परेरी अकोमोडेशन बनाएंगे सेना के लेबर इस्तेमाल करते हुए। फिर जो 62 में हुआ और जो मुंह की खानी पड़ी जनरल कॉल के तहत जो सिर्फ फोर कोर था उसको, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय सेना अभी भी पॉलिटिकल है और ऐसी बातों की महज छोटी सी शुरुआत है, लेकिन अगर हम इस दिशा में बढ़ते रहे तो मैं कहूंगा प्रजातंत्र के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं होगी।
राहुल बेदी साहब, कार्यक्रम में समय कम बचा है, एक छोटा सा सवाल जिसका संक्षेप में जवाब जानना चाहेंगे। सरकार किसी की भी हो, भारत जैसे लोकतंत्र में सेना के राजनीतिक इस्तेमाल की कोशिश करने का क्या दूरगामी एक खतरनाक नतीजा आप देखते हैं?
देखिए, ये हिंदुस्तान को पिछले 70 साल में ये फिक्र रहा है कि पाकिस्तान में कू हुआ है, बांग्लादेश में भी कू हुआ है और ये फौज ने टेक ओवर किया है, मगर इसका इन्होंने एक बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि जो प्रमोशंस होती हैं सीनियर रैंक्स की, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंट्रोल होती हैं और वो उसमें लगभग पॉलिटिशियन ही कंट्रोल और ब्यूरोक्रेसी ही कंट्रोल करती है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान में ये कू का जो डर है, ये मैं तो नामुमकिन समझता हूँ, इसका ये कभी होगा यहाँ। मगर ये डिसफेक्शन जो है आर्मी में, जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो पोलिटिसाइजेशन है, जैसे जनरल पनाग ने भी कहा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और आर्मी को जैसे ब्रिटिश भी आर्मी कंटूनमेंट जो होते थे, छावनियाँ जो होती थी, वो शहर से नॉर्मली दूर होती थी, क्योंकि वो सिविलियन के साथ इनका तालमेल, फौज का वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, तो वो अब ये रल मिल गए हैं। और ये जो डाइल्यूशन ऑफ आर्मी का रोल है, वो मैं तो बहुत खतरनाक समझता हूँ, और जल्दी से जल्दी हमको ये डीपोलिटिसाइज कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमें मुश्किल पड़ सकती है आगे।
बहुत शुक्रिया राहुल बेदी साहब, थे रक्षा मामलों के जानकार। कार्यक्रम में समापन से पहले चलते चलते मैं जिक्र करूंगा, बीबीसी के हिंदी फेसबुक पन्ने पर कुछ पाठकों ने, श्रोताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सिंपू राजपूत लिखते हैं कि आर्मी में जो यूनिट रिजर्व होती हैं उनके लिए ब्रिज बनाना ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कमलेश उपाध्याय लिखते हैं कि सेना का कार्य है राष्ट्र की सेवा करना, वो सीमा पर हो या देश के अंदर, और ये निर्णय लेना सेना और सरकार दोनों ही ये निर्णय ले सकती हैं। मोहम्मद रिजवान खान लिखते हैं, जब सेना पुल बना रही है तो सरकार भी सेना को ही बनाने दीजिए, पुल भी अच्छा बनेगा और सरकार भी अच्छी बनेगी। जुनैद अली लिखते हैं, अजीब सरकार है, प्रदेश में अपनी ही हुकूमत और रेल मंत्रालय को बौना और कामचोर साबित करने पर तुली है। शाह आलम शेख लिखते हैं, कोई बहुत इमरजेंसी का काम हो तो बात समझ में आती है, ठीक है, नहीं तो बाकी लोग किस लिए हैं, सिर्फ ताली बजाने के लिए। ये कुछ टिप्पणियां थीं जो बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से मैंने आपको सुनाई। अब इंडिया बोल को यहीं विराम देना होगा। आज का इंडिया बोल संपन्न हो रहा है, लेकिन चर्चा जारी रहनी चाहिए। राहुल बेदी, आप स्टूडियो नहीं आ पाए लेकिन चर्चा को सार्थक बनाया, टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया हमारे उन तमाम श्रोताओं का जिन्होंने हमें सुना और अपनी राय भी जाहिर की, लेकिन जिन्हें कार्यक्रम में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, आज उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय के साथ, चर्चा के साथ हाजिर होंगे। आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम, और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रहे थे मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी संदीप राय, संदीप सोनी के साथ। अब पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और अगला कार्यक्रम सुनना ना भूलें, भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत। फिलहाल शुभ रात्रि।